प्रेम प्रिय की मांग को नहीं समझते। जैसे एक सौत दूसरे सौत की इच्छा को नहीं मानी, वो मरे चाहे कुछ भी, हमारे पास हमारा पति आना चाहिए, हमको धन देना चाहिए, है ना, सौत या क्या है उसका। एक सौत दूसरे का उत्कर्ष नहीं चाहता। जीवा देखती है कि ये तो बहुत स्पर्श कर रहा है, सुन रहा है, तो नहीं देखो तो दिखाओ, यहां तक कि भोजन नहीं भी मिल रहा है तो चल घंटा फिर भी चलो देख, और जीवा कहती है तो खाओ तो खिलाओ, इनमें प्रेम नहीं है आपस में, तो खींचती रहो। जैसे गृह पति को सौतें खींचती है, वैसे देह पति को, गृह पति को सौते खींचती है, वैसे देह पति को इंद्रियां खींचती है। देह पति की बैठे हैं आत्मा, देह पति क्या है, देह के नौकर बैठे। हमारे गांव में एक बार लोग विदा एक नाटक कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति है, बहुत से पत्नियां रखा था, शाम के समय जब घर में आया तो पत्नियां कहने लगे हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो, और लगी खींचने, और खींचते खींचते वो ही मर गए। नाटक में दिखा रहे कोई पैर खींच रहे थे, कोई हाथ खींच रहा था, इस तरह पकड़ पकड़ के खींचते खींचते वही दम। नाटक में दिखा रहे, भागवत का प्रैक्टिकल कर रहे, उस समय में नहीं समझ रहा, बहुत पहले की बात। इस तरह से दर्शा इंद्रियां जो है देह पति की जान ले लेती है, इंद्रियां इस तरह से खींचती है अपने आप, और हम सारा धन उनके लिए खर्च कर। आप देखिए आप कुछ और कठोर बात कर, और अथत जग कौटुंबिका दारा पत्या दे नाम ना। पहले कहा गया था कि उस समाज में बड़े समुदाय में सियार घुस जाते हैं, भेड़िया घुस जाते, और देखते देखते घुसते और सामने सब कुछ खा जाते हैं जो रखा रहता है खाना, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता। वो सियार कौन है इसकी व्याख्या करो। जब तक कौटुंबिका दारा पत्या दो, दारा मत पत्नी और अपत्य मत पुत्र आदि, ये स्त्री और पुत्र आदि जो कौटुंबिक है, कुटुंब वाले हैं, ये नाम से तो दारा पत्या दे, नाम है स्त्री, नाम है पत्नी और नाम है पुत्र, नामना, परंतु कर्मणा वृक्ष श्रीजाला है।
घर से ब्रिक है, भेड़िया है और सियार, एवं पद है निश्चित कर्म से भेड़िया है और सियार,
और ये इसका धन खाते रहते हैं, सुख इसका दुखते रहते हैं, कदर जैसे चाहता है कि इतना धन मिलना खर्च हो, कृपण है, कुटुंबी है, लेकिन जैसे गणेरी भेड़ की रक्षा करते हैं लेकिन भेड़िए उठा करके ले जाते हैं, पूरा पूरा मन भेड़, उसी तरह से समक्ष मानवती इसकी ये रक्षा करता रहता है, बहुत अच्छी तरह से रक्षा करता है अपने धन की, परंतु इसके देखते देखते में भरम सब ले रक्षा करता है, चाहता है अपने धन की रक्षा अपने स्त्री और पुत्र से भी करना चाहिए, लेकिन वो रहने नहीं देते, बोलते हैं हुआ हुआ मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं अपने माता पिता को छोड़कर आई हूं, मैंने तुमको समर्पण किया है, हमारी मांग कौन पूरी करेगा। और वो सोचता है हम क्या, इसको कहते हैं निश्चरता, मैंने देखते 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 सब कुछ लेते सामने रक्षा खोल करके ले गए, अब कुछ नहीं कर सकते। देखते देखते वास्तव में पुत्र जो होता है वो धन लेने के लिए ही होता है, जो भी कमाए हैं वो अपने आप दे देंगे बेटा, सरकार भी दे देती है, और उसका कौन उत्तराधिकारी है उसको, तो धन लेने के लिए जन्म लेता है, और स्त्री होती है जीव को जन्म मरण में डालने के लिए, तो भागवत में लिखा गया, इसीलिए भक्त होना चाहिए, भक्त होने पर यह सब नियम खत्म हो जाएगा, नहीं तो जन्म मरण में पढ़ना पड़ेगा, संस्कृति हेतु भूत जाए, जन्म मरण में रहने का कारण बनती है स्त्री। स्त्री की ममता से ही मनुष्य नरक आदि में जाता है, बहुत ज्यादा पाप अपनी पत्नी के लिए करता है। इस संसार में देखा जाए वो सब कुछ उसके लिए खर्च करते हैं। ये इतिहास बताता है राजा दशरथ के लिए, राजा दशरथ थे जब स्वर्ग युद्ध करने गए थे तो उनकी स्त्री ने उनको बहुत सहायता दी थी। कहते हैं तो उसको कह दिए प्रिय कुछ मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगा, जो मांगोगी मैं दूंगी। इस तरह से पहुंच भला बताइए, इस तरह से बोलना चाहिए। इतना तुम स्नेह करते हो जो मांगेगी वही दे दो, और उसने कह दिया वो मांगने वाली नहीं थी, वास्तव में प्रेम करती थी, लेकिन उसने कह दिया नहीं क्या मांगू मुझे कोई जरूरत, ऐसे टाल दिया कि भविष्य में कोई जरूरत लगेगी तो मांग लूंगी अभी हमें नहीं। लेकिन पति कितना स्ट्रांग है स्त्री का, गुलाब कहता है जो भी मांग पाए, ऐसा कभी स्त्री से नहीं कहना चाहिए जो मांग दू, और कह देगी कि माला छोड़ दो तब आप क्या कर रहे हैं। बताइए इस तरह का अधिकार केवल कृष्ण को है, समझे? आप केवल कृष्ण से कह सकते हैं कि हे कृष्ण आप जो भी मांगेंगे मैं दूं, और किसी का कोई अधिकार नहीं। सभी नहीं कह सकते हैं कि आप कुछ मांगो और मैं दूं, और लोगों के लिए कहना चाहिए कि मैं इतना दूंगा बस, और जिसको देना हो अपनी ओर से देना, भगवान को जब देना हो तो उनकी ओर से दो, वो जो मांगे हो तो, जैसे बलि महाराज ने भगवान को दी। उन्होंने कहा तीन पल घूमनी चाहिए, बलि महाराज ने कहा तीन पल आपको चाहिए, तीन पल नहीं चाहिए, तो शुक्राचार्य मना करने लगे, नहीं नहीं तीन पद में सारा जगत नाप लेंगे, दो पद नहीं, दूसरे के लिए तुम्हारे पास भूमि नहीं है, तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी, इसीलिए कुछ धान बचा लो, दोनों हालत में तुम नरक में जाओगे, देते हो तब भी नरक में जाओगे क्योंकि पूरा नहीं करोगे, और नहीं दोगे तब भी नरक में जाओगे, झूठ बोलो, इसलिए जब नरक में गिरना ही है तो कुछ धान बचा लो, घोड़ा दो। बलि महाराज कहते हैं वो उसे निकल गया, निकल दूंगा, भगवान ने देख ले, केवल कृष्ण को अधिकार है सब कुछ लेने का, चूंकि और कोई सब कुछ दे भी नहीं सकता है दूसरे को, कहना ही नहीं चाहिए कि तुम जो भी इच्छा करे मांग, क्यों हम अपना जीवन उसके हाथ में दे, कह दे कि अपना गर्दन काट करके दे दो तब क्या होगा, बताइए तो कुछ भी मांग सकती है। और वही बात हुई एक दिन, ऐसा मांग किया कैकेयी ने कि राजा दशरथ गिर गए थे हो सकते, तो इस तरह से अधिकार उनको नहीं देना चाहिए था। आज तुम भगवान के गुलाम हो, भगवान के दास हो, न कि स्त्री के हो, स्त्री से एक सीमा के अंदर व्यवहार करना है, ठीक है हमसे तुमसे प्रेम है, तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा जीवन और पूरा धन तुमको दे दू। ये सीखने की बात है वास्तव में, नहीं तो इस तरह से लोग बाद में बहुत दुख में पड़ जाते हैं। यदि राजा दशरथ को वचन नहीं दिए होते अपनी स्त्री को तो राम का राज्य अभिषेक आराम से हो गया था, कोई अड़चन नहीं। और ऐसी स्त्री से उन्होंने वागदान कर दिया और कहा कि इसे गुप्त रखना चाहिए, लेकिन वो मंथरा से कहते स्त्रियों के हृदय में कोई बात बचती नहीं, उसने बातचीत में बता दिया था पहले कि हमारे पति हमको दो वरदान देने वाले, बताइए उस नलायक औरत से कहने की क्या जरूरत। स्त्रियों की यही बुद्धि है, मंथरा से बता दी। उस समय जब मंथरा इसकी बुद्धि को फोड़ने लगी कि तुम भरत के लिए राज मांगो, भरत के लिए राज मांगो, तो कहते कहते कैसे मांगो, तो वो कहते तुमको याद है तुमने मुझसे बताया था कि राजा दशरथ तुमको दो पर था मांगने के लिए कहे थे, तब कहते हाँ याद, अगर मंथरा को भी वो नहीं बताई होती तब भी काम हो गया होता, तो मंथरा को बता दी। मंत्रा बताई यही दो वरदान मांगो, मैं बता रही हूं, एक से भरत को राज्य और दूसरे से राम को वनवास मांगो, इतिहास के आलोक में हमें सीखना चाहिए कि अपनी पत्नी से हमें कितना विश्वास करना है, कितना व्यवहार करना है। वही पत्नी थी जो राम को पुत्र मानना चाहती थी, कहती थी कैकेयी कि जो भी जन्म दे कर छो हो गोहू राम से पुत्र पतो। अगर विधाता पुनः मुझे नारी का जन्म दे तो मैं यही अचरा प्रसाद करके मानती हूं कि राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी पतोह बने, ऐसा मानती थी ब्रह्मा से। लेकिन मंथरा ने ऐसी बुद्धि को नष्ट किया कि राम को वन में भेज करके ही उसने राम का प्रेम खत्म। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत है शास्त्रों का, स्त्री पर पूरा विश्वास तभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है जब स्त्री दास है उनको एक बात कठोर लगेगी लेकिन मैं बिल्कुल फैट पा रहा हूं शास्त्र का। और नियम यह है कि स्त्री को पति दासी होना चाहिए, उसे पति के अधीन होना चाहिए, पति को कभी स्त्री के अधीन नहीं होना चाहिए। स्नेह करना दूसरी बात है, प्रेम करना दूसरी बात है, उसे आभूषण देना या वस्त्र देना वो दूसरी बात है, लेकिन दास नहीं होना चाहिए। दास तो भगवान का होना चाहिए। और स्त्री दास दासी हो सकती है पति, ये सिस्टमेटिक धर्म, ये सिस्टम। इसीलिए हम शास्त्र में पढ़ते हैं पति व्रता नारी, लेकिन पति व्रता पत्नी व्रत पुरुष नहीं पढ़ते, पत्नी व्रत पुरुष नहीं। और जहां पत्नी दासी होती है और पति उसे स्नेह करता है लेकिन उसके अधीन नहीं रहता है तो वहां घर गृहस्थी के भाव सुंदर ढंग से, क्योंकि पत्नी जब रहेगी तो पति से प्रेम में कम रहे, लीडर पति को होना चाहिए। भगवान ने शुरू से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में कम बुद्धि दिया है, उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए क्या नहीं बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है पुरुष बुद्धिमान, उनके बुद्धि से चलना चाहिए। अरे स्वाभाविक भी है, स्त्रियां समर्पण करती हैं, पुरुष समर्पण नहीं करते। स्त्री अपने पति अपने पिता को अपनी मां को नैया को छोड़ करके पति को समर्पण करती है, सर्व धर्मांतरित से मां वहां समर्पण करती है। पति तो समर्पण नहीं करता है कि अपना घर द्वार सब छोड़ करके और वही ससुराल में रहने लगे, कोई कोई ऐसे होते हैं कभी कभी कोई धन मिलने पर ऐसा होता है, जब ससुर को कोई लड़का नहीं होता है केवल बेटी रहती है तो उस हिसाब से वहां चला जाता है, लेकिन कोई अभिनता नहीं है वो तो ठीक है। लेकिन ऐसे यहां कहने का आशय है कि पुरुष को कभी स्त्री का अधिक नहीं होना चाहिए, पुत्र का अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो नाम इनका स्त्री और बेटा है लेकिन कर्म इनका सियार का भेड़िया का तर्क, ये दया नहीं करते कितना मरमर करके पैसा कमा रहा है, वो अपनी मांग और बजट पेश कर देते हमको इतना चाहिए, पैसा कमाने में उस पुरुष को कितना मेहनत पड़ रहा है स्त्री भी कभी कभी नहीं समझ पाती, और फालतू खर्च करती रहती, फालतू खर्च करती रहती। ये सारा धन कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करना, भोग लगाना, बांटना और सब, ये यह शिक्षा दी जा रही। अब ये आया था कि यह जंगल अनेक प्रकार के लताओं से घास से भरा हुआ है और इसमें इसको चलना पड़ता है, फंसना पड़ता है, तो इसको बता रहे हैं इस तरह से, जथा हिमवत्सर कृष्ण मानव आपके तत्व बीजम क्षेत्रम पुनः है वह आप अपन काल है, क्या लिख तरह कष्ट दिए हैं पांच मिनट पांच मिनट कीर्तन होगा, ठीक है कीर्तन कर लें। पांच मिनट कीर्तन करके फिर 10-15 मिनट बोलेंगे। ऐसा कोई गाने जिसे सब लोग थिरके, ऐसे जोश में गाया जाए जिसे सब लोग ताली बजाने और एक तरह क्या क्या घास पड़ जाता है उसमें, हम लोग क्या है घास को साल कर घास उसमें भर जाता। इसी तरह से जो आवश्यकता है जो गृहाश्रम है उसको कर्म क्षेत्र कर, गृहाश्रम और कर्म क्षेत्र। मनुष्य सोचता है कि अब सारा काम खत्म हो गया, अब आराम करना है, लेकिन और बहुत से काम दिखने लगते, ये करना है, वो करना है, ये करना है। खासकर के गांव में हम देखे हैं, वर्षा काल आने से पहले लोग सोचते हैं ये काम हो गया, घर द्वार छा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर तुरंत खेत जो तो ये काम करो, फिर उसके पहले बेटे का विवाह करना है, पिता करना है, ये कर दो, काम समाप्त कर दे, क्रिया खत्म करे, गृहस्थी को लेकर काम धंधा कभी समाप्त हो। अब सोचता है अच्छा हम किस तारीख तक सारा काम सरकार देंगे, इसके बाद फ्री हम देते, वो अधिक पहुंचते हमें एक काम खड़ा हो जाता, ऐसा काम धंधा लगा। यहाँ तो शहरों में ये काम कम है, लेकिन गांवों में वास्तव में बहुत काज रहा, स्त्री पुरुष सब काम में लगे रहते, पूछना है, पीसना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। स्त्री आपस में बात भी करते हैं, इतना काम चलता है, इतना कार्य कर दिया, ये करना है, वो करना है, ये करना है, गोबर पाटना है, ये करना है, वो करना है, बहुत तरह के काम में लगे रहते हैं पुरुष। कभी कार्य समाप्त नहीं होते घर गृहस्थ, ये नहीं सोचना चाहिए मनुष्य को कि एक दिन हमारे घर का काम धंधा सब खत्म हो जाएगा तब मैं भजन करना चाहता हूं। निश्चिंत होना कभी निश्चिंत नहीं हो सकता, कभी निश्चिंत नहीं हो। फिर आदमी सोचते होंगे कुछ कि बूढ़ा हो जाएंगे तब जुम्मारी खत्म होगी तो भगवान का जप करेंगे, उस समय भी नहीं करेंगे। आपके पुत्र और आपके पुत्र वधु वो आपके गोद में एक बच्चा दे देंगे, बूढ़ा होने पर इसको खिला और उसी का मुख देखते हुए रात दिन बचवा बाद करते हुए वो दिखता है बूढ़ों का। और वो लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिन जी है, लेकिन हमारे घर की सिक्योरिटी बनकर वो तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी द्वार पर बच्चा को खिलाता रहता है। तो बूढ़े भी बड़े सहारे होते हैं आज तक, अगर न रहे तो बच्चों को दूसरी जगह डालना पड़ता है ना, नर्सिंग है, पार्किंग में डालना पड़ता है, तो पार्क करना पड़ता है कुछ दूर के बाद माता पिता काम पर से आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो लड़का क्या बनेगा वास्तव, जिसका पालन पोषण दूसरा व्यक्ति कर रहा है, जिसके हृदय में कोई स्नेह नहीं, बच्चा क्या बने।
जो भी हो बुढ़ापा कभी फुर्सत नहीं मिलता, बच्चों की ममता में इतना पड़ जाता है, इतना पड़ जाता है, कहा तो पूरा सोचता है कि ये मेरा
नाती है, उसका विवाह होता उसके पुत्र का मुख देख करके मरता था बहुत अच्छा, बेटा के बेटे का मुंह देख लिया संतोष नहीं हुआ, अब उसके बेटे का मुंह देखकर मरेगा तो मैं टूट गया, ये दशा है। कभी तक खत्म नहीं होगा। इसलिए अभी भगवान का भजन करना चाहिए। कार्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे खेत के घास आदि कभी समाप्त नहीं होंगे। इस तरह से हमारा व्यापार लगाम है। अब तो समय पूरा हो गया, मैं काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। कुछ वक्त काल को भी जीत लेते हैं, मैं काल जय नहीं, मैं काल के अधीन रहता। अब पहले से यह निश्चित किया गया था कि 7:30 बजे तक कथा चलेगी, लेकिन आधा घंटा अनुमोदन किया जाएगा। आप लोग आपस में निश्चित करके भागवत होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए। तो इस हिसाब से लगता है कि उस अनुमोदन ने कम से कम 2 तो कर दिया आप। और अगर आते आते एक बार मई में होगा तो 2 तो हो ही जाएगा साल में। हाँ हाँ, ऐसे अनुमोदन के बल से और भी हो सकता है भगवान की दया से। तो कृपया आप लोग आपस में नाम दें और आकर के अनुमोदन करें। सब लोग बैठे रहें, जैसे जब भरत जी की कथा सुनकर राजा रघुगण बोले या सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनकर परीक्षित महाराज बोलते हैं, तो उसी तरह से ये कथा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भागवत से बाहर की कथा है। अनुमोदन होना ही चाहिए, कहां ही सुना ही अनुमोदन करें। भाव बारी दिग्गो पदे उसका रहे। सब लोग शांति से बैठे रहेंगे 7:30 तक। जल्दी जल्दी है, थोड़े थोड़े समय में पूरा किया।
वास्तव में हमने सपने देखा कि हमने सपने अमृत का पान किया। मेरे ख्याल में तो ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो ये कह सके कि नहीं, हमको इस कथा से अमृत नहीं मिला है। बोली ऐसा हो तो हाथ उठाए कि हमको अमृत नहीं मिला है। तो हाथ तो एक बजे उठा तो मतलब अमृत तो सबको मिला ही था। अब जब अमृत मिला है तो इस कथा में श्रीमद् भागवत देखिए जो 7 दिन तक सुनते हैं उनको 2 चीज सबसे असर कर जाती है। एक तो वो कृष्ण भक्त हो जाता है, जो कृष्ण भक्त समझता भी नहीं है वो एकदम कृष्ण भक्त हो जाता है। ऐसे 7 दिन के प्रवचन सुन के श्रीमद् भागवत का, और दूसरा उसमें त्याग भावना आ जाती है। तो आप में से कम देखिए ऐसा होता है कि आप समझिए आप 300-400 की गैदरिंग है, इसमें से 10 भक्त भी यदि ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैं कृष्ण भक्त हो गया, मैंने ये चीज छोड़ दी, इस कथा का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो कम से कम 10 भक्त तो हाथ उठाएं और ये कहें कि हाँ हम इस कथा के कारण से कृष्ण भक्त बने हैं। तो कृपया हाथ उठाएं जो ये कहें कि हम कृष्ण भक्त बने इस कथा के कारण से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि 7 से ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब इस कथा का प्रयोजन पूर्ण हुआ है। अभी रहा त्याग की भावना। महाराज जी ने 2 दिन जो इस बात पर हुआ है प्रवचन कि रघुगण तो पूरा संसार ही छोड़कर चले गए, हम लोग घर तो नहीं छोड़ेंगे, इतना त्याग तो आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन कम से कम त्याग भावना तो आई जानी चाहिए कि गृहस्थी होकर मेरे निर्मित होकर के जीवे, तो ऐसी भावना किस भक्त के अंदर आई है, किस श्रोता के अंदर आई है, वो कभी हाथ उठाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये तो 10 से भी ज्यादा है, तो मतलब इस कथा का प्रयोजन पूरा हुआ है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि आप ये चाहते हैं कि ऐसा अभी आप सब चाहते हैं कि इस कथा का आयोजन रिपीटेड हो। हमने शुरुआत की थी महाजन लास्ट अप्रैल में जब हुई थी कि भाई 4 भागवत होनी चाहिए। महाशिवी से हमने रिक्वेस्ट की थी, महाशिव बोले कि भाई 4 तो मैं नहीं कर सकता लेकिन 3 जरूर कर दूंगा। 3 के लिए हमने मंदिर के और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमको जगह आप दे दो, भागवत हम 3 करवा देंगे। बड़े प्रयास के बाद हमको ये मिली है, कई कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन सब एडजस्ट हो गया। सुबह हमने वहां भी शाम को यहां भी एडजस्ट हो गया, बड़े प्रेम से एडजस्ट हुआ है। आप सबने बड़े प्रेम से दोस्त होना है और ये सब चैनल हमारा बड़े प्रेम से बहुत सफल हुआ है, जिसको हम सब बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। सफल इसलिए हुआ है कि यहां पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी श्रोता जो दोनों, नॉर्मली क्या होता है जैसे हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोग क्वेश्चन बिल्कुल करते थे कि भाई हमारी सभाओं में क्वांटिटी कम आती है कंपेयर टू दूसरी जगह पे, दूसरी जगह में 50,000,00,000 इतने लोग आते हैं, हमारे यहां बहुत कम आते। प्रभुपाद जी बोलते थे कि क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी पर मत जाओ, हमेशा श्रोताओं की क्वालिटी पर जाओ। यदि 10,000 आदमी का एक भी प्रश्न भक्त हो गया तो हम उसको समझे कि हमारी ये श्रोता है वो बड़े अच्छे श्रोता है। तो हमारे यहां जो दोनों चीजें हैं इस कथा में, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। तो ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमको बरकरार रहे, इसके लिए हम सेकंड आयोजन भी आपको बहुत जल्द ही करवाएंगे। ये इसीलिए होगा क्योंकि आप सबका हमको सहयोग है। इवन ये प्रपोजल मंदिर के मैनेजमेंट से ही आया है हमको, कि इससे ज्यादा विशाल आयोजन किया जाए। अब महीना कौन सा होगा ये तो फिर देखेंगे हम, नवंबर होगा, दिसंबर होगा कि जनवरी होगा, लेकिन एक आयोजन जरूर हम करवाएंगे। और अप्रैल का आयोजन तो पक्का है क्योंकि ये तो जो हॉल में ही जाएगा अप्रैल में, तो हमको दिक्कत आएगी। इन बिटवीन एक आयोजन और करने की हम जरूर प्रयास करेंगे और हो सकता है आप सबके सहयोग से, मैनेजमेंट के सहयोग से और दूसरा आयोजन भी हो जाए। हरे कृष्ण।
मंत्राद की गौपाद की हरिद सारा गोविंद स्वामी की हमारे महाराज का जो महत्वतम सत्ता है, मेरे ख्याल में उसने एक बहुत
कार्य संपन्न किया है बॉम्बे हरे कृष्ण लाइन में, कि हमारे भक्ति प्रधान बुक ट्रस्ट ने पहली बार ये श्रीमद भागवतम प्रभुपाद जी का 18 खंडों में निकाला था। जब ये गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को मिलने जाते थे पुराने जमाने में, तो गोपाल कृष्ण प्रभुपाद जी को वेर इज माई हिंदी बुक, मेरी बुक भागवत कहाँ है, हिंदी में जल्दी छापो इसे। तो ये जो हिंदी में जो 18 खंडों में जो श्रीमद भागवत है, ये सारे हिंदी जो हमारे भक्तों के लिए बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी उनको, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था और कीमत भी बहुत ज्यादा था ताकि कोई नहीं दे पा रहा था। तो महाराज की कृपा से और इस श्रीमद भागवतम महामहोत्सव की वजह से भगवान की योजना है और वासुदेव प्रभु की कृपा से अभी ये श्रीमद भागवत समारोह में आज तक श्रीमद भागवतम क्षेत्र चरितामृत और प्रभुपाद लीलामृत की 88 सेटों का वितरण हुआ है। सेट वितरण हो कल तक, ताकि प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पे उनके चरण कमलों में सबसे अच्छा बेड महाराज की सहायता करने में महाराज प्रभुपाद जी को आप सभी की तो सभी के बहुत अनेक अनेक साक्षात्कार हैं भागवत सप्ताह के बारे में, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि ये ऐसा सप्ताह महीने में एक बार हो, क्योंकि अगर महीने में एक बार
एक तो हमारे भागवत सेट
जाएंगे, एक तो हमारे भागवत सेट देने के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, 108 भागवत सेट देने के लिए 2.5 बरस लगता है, हम तो अलग से तो 2.5 बरस का काम महाराज ने बिल्कुल 2 दिन में कर दिया है। तो इसीलिए मेरे भी विनती है महाराज से कि ये भागवत सप्ताह बार बार हो रहे हैं और वासुदेव चौधरी प्रभु जी की इसको स्पॉन्सर करते रहे।